जैसे ही जयराज ने अभिमन्यु की ये बात सुनी, वो उसे घूरते हुए बोला, आप होते कौन हैं हमें ये हुक्म देने वाले? और वैसे भी आप तो अब इस राजमहल के राजा भी नहीं बन रहे हैं, तो आपको हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं आपके बड़े भाई अभिनव अब इस राजमहल के राजा बनेंगे। जैसे ही अभिमन्यु ने जयराज के मुंह से ये बात सुनी, वो उसे बड़ी हैरानी से देखने लगा। वहां मौजूद सभी लोग जयराज को गुस्से से घूर रहे थे। समर्थ जोर जोर से हंसते हुए बोला, हमें लगता है मिस्टर जयराज नशे में है, या फिर वो अभी भी 3 दिन पुरानी न्यूज को लेकर हवा में उड़ रहे हैं। समर्थ के इतना बोलते ही जयराज उसे घूर कर देखने लगा। समर्थ अर्पिता के पीछे से आगे आकर अभिमन्यु के बगल में खड़ा होते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले ही अभिमन्यु का राज्याभिषेक हुआ है, आपने शायद अभी तक न्यूज देखी नहीं। कोई बात नहीं, अब आप घर जाकर आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि अब अभिमन्यु का राज्याभिषेक हो चुका है और वो इस महल का राजा है। जैसे ही जयराज ने ये बात सुनी, वो बिल्कुल दंग रह गया। तभी उसने अभिमन्यु के माथे पर लगे राजतिलक को देखा और नोटिस किया कि अभिमन्यु ने ट्रेडिशनल कपड़े भी पहने हुए थे। ये देखकर वो बिल्कुल ही शॉक हो गया और तभी उसने अपने मन में कहा, क्या सच में हमने इतनी बड़ी गलती कर दी? जयराज की बात को सच साबित करते हुए अर्पिता आगे बढ़कर आई और उसने जयराज की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अब हम आपकी किसी भी बात में नहीं फंसने वाले। आपको आपकी ज़िंदगी और आपकी अय्याशी मुबारक हो, और आइंदा कभी हमारे सामने मत आइएगा। हमारा अब आपसे कोई रिश्ता नहीं है। उठाइए ये डाइवोर्स पेपर और चुपचाप यहाँ से चले जाइए। जयराज ने अर्पिता के मुंह से ये बात सुनी, उसने अपने मन में कहा, लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर ये अभिमन्यु सच में राजा बन गया है तो हमें अभी इससे माफ़ी मांगनी होगी, वरना ये तो हमारे ख़ानदान के साथ साथ हमारी कंपनी का भी नामोनिशान मिटा देगा। ये सोचकर जयराज अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोला, साले साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने अर्पिता के साथ बहुत गलत किया और गुस्से में आकर उन्हें डाइवोर्स पेपर भिजवा दिए। हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अभिमन्यु जयराज के बदले हुए रूप को देखकर बिल्कुल ही शॉक हो गया, लेकिन अर्पिता और समर्थ उसे गुस्से से घूरते हुए देख रहे थे। जब जयराज ने देखा कि अभिमन्यु को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो वो सीधे मासा की तरफ देखने लगा और उनके पास आकर उनके पैरों को पकड़ते हुए बोला, सासू माँ, हम ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन हमें भड़काया गया और हम बहक गए। हम आप लोगों से अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। मासा अर्पिता की तरफ देख रही थी और उन्होंने जयराज की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आप चाहे जितना भी भड़के हों, आपको इस तरह अर्पिता को डाइवोर्स पेपर नहीं भेजने चाहिए थे, ये भेजकर आपने गलती की। जयराज ने पेपर्स की तरफ देखते हुए कहा, हम ये पेपर्स फाड़ देंगे, आप प्लीज़ अर्पिता को समझा दीजिए कि वो हमारे साथ वापस चलें। अभिमन्यु उसे इस तरह बोलते देखकर उसके करीब आया और जयराज की कॉलर को पकड़कर उसे गुस्से से उठाते हुए कहा, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी आपने बदल लिए। हम अब अपनी बहन की ज़िंदगी और बर्बाद नहीं होने देंगे। चले जाइए यहाँ से, वरना हम आपको धक्का देकर राजमहल से निकालेंगे। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तो सोच लीजिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने उसके कॉलर को कसकर पकड़ा। जयराज ने अपनी कॉलर से अभिमन्यु का हाथ छुड़ाते हुए अर्पिता के पास आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, अर्पिता, आप तो हमसे प्यार करती थी ना, तो फिर क्या आप भी हमें माफ करके एक दूसरा मौका नहीं दे सकती? अर्पिता ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम आपको अब कोई मौका नहीं देना चाहते, और हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं कि एक के बाद एक वही गलती दोहराते जाएं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी के अभी यहाँ से चले जाएं। जैसे ही अर्पिता ने ये बात कही, जयराज ने अर्पिता का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, हम आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, चलिए यहाँ से। इतना बोलकर वो अर्पिता को खींचकर वहां से ले जाने लगा। सब लोग उसे ऐसा करते देखकर हैरान हो गए। इप्सिता अर्पिता की तरफ देख रही थी और वो काफी ज्यादा घबरा गई। उसे ऐसा लग रहा था कहीं जयराज अर्पिता को कोई चोट न पहुंचा दे। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, समर्थ ने आगे बढ़कर अर्पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और जयराज का हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा, खबरदार, अगर आपने एक और बार अर्पिता को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। जयराज समर्थ को घूरते हुए देखने लगा। तभी अभिमन्यु ने तेज आवाज में कहा, गार्ड्स, इन्हें अभी के अभी राजमहल से बाहर निकालो और ये दोबारा राजमहल के आसपास भी कहीं नजर नहीं आने चाहिए। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात कही, सामने खड़े कुछ सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आगे आए और जयराज को पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए राजमहल से बाहर ले जाने लगे। उनके जाते ही अभिमन्यु ने वहां मौजूद सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम आज सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के लिए काफी ड्रामा हो गया है, अब अगर कोई रस्में ना बची हो तो क्या अब हम अपने रूम में जा सकते हैं? मासा ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, कोई अभी कहीं नहीं जाएगा, अर्पिता से हमें कुछ बात करनी है। अर्पिता, आपने इन डाइवोर्स पेपर्स के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? मासा काफी गुस्से में लग रही थी और अर्पिता ने मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा, जब ये डाइवोर्स पेपर्स हमें मिले थे उस टाइम आपकी तबीयत बहुत खराब थी और अभिमन्यु भाई साहब भी यहाँ नहीं थे, इसलिए हमने सोचा अगर हमने आपको ये बात बताई तो आपकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए हमने आपसे डाइवोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा। हमें ऐसा लग रहा था कि आपकी तबीयत कहीं और ज्यादा ना बिगड़ जाए। मासा ने अर्पिता के करीब आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, लेकिन आपको बिना हमसे पूछे इस तरह डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करना चाहिए था। जैसे ही अर्पिता ने ये बात सुनी वो कन्फ्यूज होकर उनकी तरफ देखने लगी। मासा ने कहा, अब आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? आप मानिए या ना मानिए, जयराज आपके पति हैं और आज नहीं तो कल आपको उनके पास वापस जाना ही होगा। जैसे ही मासा ने ये बात कही अभिमन्यु, समर्थ और इप्सिता की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। नंदिनी और उदय एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अर्पिता ने मासा की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मासा, लेकिन अब हम उनके घर में दोबारा नहीं जाने वाले। आप नहीं जानती वहां पर हमारे साथ किस किस तरह का सलूक हुआ है। हम अब वहां वापस नहीं जाएंगे और वैसे भी हमने उन्हें डाइवोर्स दे दिया है। अब हमारा उनसे और उनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे ही अर्पिता ने ये बात कही मासा उसे घूरते हुए देखने लगी। उसने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया। मासा ने कहा, अगर आप जयराज से अपने सारे रिश्ते तोड़ रही हैं तो फिर क्या करेंगी आप अर्पिता? ये बात सुनकर अर्पिता बिल्कुल चुप थी। तभी अभिमन्यु मासा के पास आकर बोला, मासा ये कैसी बात कर रही हैं आप? अर्पिता हमारी बहन है और हम अब उसके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमें पता है हमें आगे क्या करना है। आप इन सारी चीजों की टेंशन मत लीजिए और अर्पिता आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये राजमहल जितना हमारा है उतना ही अर्पिता का भी है। आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक हम यहाँ हैं। अर्पिता अभिमन्यु की तरफ देखने लगी और तभी इप्सितांश के पास आई और उसने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ अर्पिता आप भी प्लीज अपसेट मत होइए। आपके भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका यहाँ पर पूरा हक है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। ये आपका घर भी है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और उस तरह के रिश्ते में तो बिल्कुल भी रहने की जरूरत नहीं है।
मासा ने जैसे ही अभिमन्यु और इप्सिता को अर्पिता के बगल में खड़े होते हुए देखा और उन दोनों की ये सारी बातें सुनी, वो और कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से सीधे अपने कमरे में चली गई। नरेंद्र और पल्लवी तो पहले ही वहां से चले गए थे और इतना ड्रामा होने के बाद भी वो लोग वहां पर वापस नहीं आए थे। उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चल पाया था। लेकिन कियारा अभी भी वहां पर खड़ी हुई थी। कियारा ने अपनी जगह से थोड़ा आगे जाकर अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा, अर्पिता दी एक बात कहूं आपसे? आपने सच में बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और ये फैसला आपकी लाइफ का बेस्ट फैसला होगा। आप बहुत अच्छी हैं और अब शायद आपको भी अपना एक सही लाइफ पार्टनर मिल जाए। कियारा ये बात बोल ही रही थी कि तभी इप्सिता ने अर्पिता को साइड हक करते हुए कहा, बिल्कुल अर्पिता आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको बहुत जल्द आपका सही लाइफ पार्टनर मिलेगा। अर्पिता उन दोनों की बात सुनकर बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और तभी उसकी नज़र समर्थ पर गई जो अभिमन्यु से कुछ बात कर रहा था। उसने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। अर्पिता की नज़रें उस तरफ ही थीं। उसे नहीं पता था कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अभिमन्यु और समर्थ के बात करने के अंदाज से लग रहा था वो दोनों किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। इप्सिता ने भी ये नोटिस किया जिस तरह से अर्पिता उन दोनों की तरफ देख रही थी। इप्सिता ने अर्पिता से पूछा, समर्थ को इस बारे में पता था ना? अर्पिता ने कहा, क्या किस बारे में? इप्सिता ने अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा, यही आपके डाइवोर्स के बारे में, उसे पता था ना पहले से ही, और अभिमन्यु को भी उसने ही बताया होगा। इप्सिता की ये बात सुनकर अर्पिता ने बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया और इप्सिता भी बाकी पूरी बात समझ गई। टू बी कंटिन्यूड। क्या लगता है आप लोगों को, अर्पिता की माँ एक्सेप्ट करेंगी उसके इस डाइवोर्स को? और क्या अभिमन्यु को पता है अर्पिता और समर्थ के बारे में? किस बारे में बात कर रहे हैं वो दोनों? और इप्सिता को क्या पता चला होगा?